मैं अब तक हर फर्ज निभाया, वो सब तुम्हें नजर नहीं आया। मैंने तो तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारे परिवार को अपना माना, पर आज तक भी तुमने मुझे पत्नी तो क्या, इंसान भी नहीं समझा। मैं तो सबको खुश रखती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, पर तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। अपनी पत्नी बनाकर तुमने मुझे लाकर इस घर में फेंक दिया, और कभी एक बार पूछा तक नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। कभी ये जानने की कोशिश नहीं कि मुझे कोई परेशानी है या नहीं। कभी ये समझने की कोशिश नहीं कि मैं खुश हूँ या नहीं। मुझे कहीं बाहर भी नहीं लेकर गए, और मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत भी नहीं। पर आज मैंने कुछ पल अपनी मर्जी से क्या बिता लिए, बाहर चली हूँ, खुश हो गई, तो कैसे गुस्सा कर रहे हो तुम मुझ पर? कैसे ताने मार रहे हो कि मैं तुम्हारे घर की इज्जत नीलाम कर रही हूँ? छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी मैं, कोई लड़कों के साथ घूम फिर नहीं रही थी, जो तुमने इतना सुनाया मुझे। तुम मुझे दो पल भी चैन से खुश नहीं रहने देते। तुम यही चाहते हो ना कि मैं बस तुम्हारे घर में कैद रहूं, कहीं बाहर नहीं जाऊं? तो ठीक है, अब से वही होगा जो तुम चाहते हो। बस तुम दीदी की शादी कर दो, फिर मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। फिर मेरे वजह से कभी तुम्हारे परिवार पर सवाल नहीं उठेंगे। तुम रहना अपने घर, अपने परिवार की इज्जत के साथ। मैं चली जाऊंगी किसी ऐसी जगह जहां भले ही सुकून से जी ना सकूं, पर सुकून से मर तो जाऊंगी। कशिश ने अपनी हथेलियों से आंखों से बेतहाशा बहते अपने आंसुओं को पोंछा और सुबकते हुए दौड़ते हुए बाथरूम में घुसकर तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया। ईशान स्तब्ध खड़ा बस उसे देखता ही रह गया। पहली बार उसने कशिश को तब रोते देखा था जब श्यामजी ने उसे घर से निकाला था। तब भी वो इतना नहीं रोई थी जितना आज रोई थी, और उसके आंसुओं की वजह वो खुद था। यही बात उसके मन को व्याकुल कर रही थी। उसने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए, पर बीच में ही उसका फोन बज उठा। ईशान ने पहले अपने फोन को निकालकर देखा, फिर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फोन उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नीचे पहुंचा तो सब बच्चे उसे गुस्से से घूरने में लगे थे, पर ईशान ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद कशिश बाथरूम से बाहर आई तो खाली कमरा, खुला दरवाजा देखकर उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर और गंदे कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने चली गई। नीचे झांक कर देखा तो सब बच्चे उदास से बैठे थे। कशिश ने उन्हें उदास देखकर ऊपर से ही आवाज लगाई, बच्चा पार्टी, तुम सबने खेलना क्यों बंद कर दिया? सब बच्चों ने उसकी आवाज सुनकर सिर उठाकर देखा और कशिश को देखकर एक साथ ही सवाल किया, दीदी आप चली क्यों गईं? आइए ना, बहुत मजा आ रहा था आपके साथ खेलने में। उनकी बात सुनकर कशिश की मुस्कान फीकी पड़ गई। ईशान की कही बातें एक बार फिर उसके दिमाग में घूमने लगी। कशिश के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने एक बार फिर अपनी उदासी को मुस्कान के पीछे छुपाते हुए कहा, तुम लोग खेलो, मैं थक गई हूँ, कभी और खेलूंगी। कशिश ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उन बच्चों में से एक लड़की ने गुस्से से भौं सिकुड़ते हुए कहा, दीदी ईशान भैया ने आपको डांट लगाई ना, इसलिए अब आप खेलने नहीं आ रही है ना? कशिश से उस बच्ची के सवाल का जवाब देते नहीं बना। कुछ पल वो खामोश रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं उन्होंने डांट नहीं लगाई, मुझे घर में काम है इसलिए अब मैं नहीं आ सकूंगी खेलने, कभी और आऊंगी तो तुम सब खेलो। कशिश ने सबको अलविदा कहा और वापस कमरे में चली आई। कुछ देर खामोश सी अकेले तन्हा बैठी रही, फिर कशिश नीचे चली आई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर में शुभिका और शुभ्रा भी आ गई, दोनों कशिश से बातें करने लगी, पर कशिश का ध्यान आज कहीं और था। वो उनकी बातों पर मुस्कुरा तो रही थी पर खुश नहीं थी, उनकी बात सुन रही थी पर हाँ हाँ के अलावा कुछ जवाब नहीं दे रही थी। रोज की तरह शाम को रामविलास जी और शुभ्रा भी आने पर उसने उन्हें चाय पानी पूछा, फिर रात का खाना बनाने किचन में चली गई। कुछ देर बाद सब खाने के लिए बैठ चुके थे। आज ईशान के आने पर कशिश ने दरवाजा नहीं खोला, उसका खाना भी रजनी नहीं दिया, कशिश उसके सामने ही नहीं गई। ये बात ईशान के साथ साथ बाकी सबने भी नोटिस की, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके खाने के बाद कशिश और रजनी खाने के लिए बैठी। यहाँ भी कशिश कुछ उदास और खोई खोई सी लगी। इतने वक्त में पहली बार कशिश इतनी गुमसुम और उदास थी। ईशान खाना खाकर कमरे में चला गया था। खाने के बाद रजनी और कशिश ने रोज की तरह बर्तन धोए, किचन का काम किया, फिर कमरे में जाने की बारी आई। पर आज कशिश शायद ईशान के सामने जाना नहीं चाहती थी। वो थोड़ी हिचकिचाई, फिर रजनी को देखते हुए बोली, दीदी आज मैं आपके साथ सो जाऊं? रजनी को कशिश के व्यवहार में आए बदलाव से शक तो पहले ही हो गया था, और कशिश के इस सवाल ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। रजनी ने चौंकते हुए कशिश को देखा और गौर से उसके चेहरे के भावों को नोटिस करते हुए चिंता भरे स्वर में बोली, कशिश क्या हुआ है? क्या तुम्हारे और ईशान के बीच कुछ हुआ है? तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या, या कोई बहस हुई है? रजनी का सवाल सुनकर और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर कशिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मुझे माँ की याद आ रही थी इसलिए आज आपके साथ सोने का मन किया, पर अगर आप नहीं चाहती तो मैं कमरे में चली जाती हूँ। कशिश का जवाब सुनकर रजनी सोच में पड़ गई। पहले तो कुछ पल कशिश के चेहरे को देखती रही जैसे उसकी सच्चाई तलाश रही हो, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोली,
अगर सच में आपको आपकी माँ की याद आ रही है तो सो जाइए हमारे साथ, पर अगर आपकी और ईशान की लड़ाई हो गई है या कोई परेशानी है तो जितनी जल्दी हो सके अपने और ईशान के बीच सब ठीक कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते में अगर नाराजगी ज्यादा वक्त बनी रहे तो मनमुटाव हो जाता है जिससे रिश्ते अक्सर कमजोर हो जाते हैं। कशिश ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और रजनी के साथ चली गई। यहाँ रजनी से लिपटकर कशिश जल्दी ही नींद के आगोश में समा गई। वहीं ईशान काफी देर तक उसके आने का इंतजार करता रहा। जब देर रात तक कशिश कमरे में नहीं आई तो उसे ढूंढने चला आया।